say Om Shanti. So I would like you to repeat after me. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti means I am a peaceful being. And three times Om Shanti means I am a peaceful being and the child of the ocean of peace and the resident of the abode of peace. So you will hear this word Om Shanti quite often wherever you go in this campus. Well, the welcome program will be after this session, and we expect many of our other seniors to come. But before that, I would like to welcome all of you on my behalf to this beautiful auditorium of the Brahma Kumaris in this Manmohini One complex, which is the part of the big Shanti One complex. I live in Pandav Bhavan, the headquarters, the main headquarters, and tomorrow you all will come to Mount Abu and experience the atmosphere of that place also. We talk about future of power. That's the theme of this retreat. To understand what power means, we have to divide this word power into two parts. One is the physical power and the other is the spiritual power. The physical power is the external power and the spiritual power is the internal power. And what type of power we wish? Physical power could be of different types. We talk about machine power, man power, money power, material power, muscle power. We have these five M's. So these are all physical powers. But then we say that these powers are so temporary. Today someone is proud of his money. Because money is also a big power. But tomorrow he can become a pauper. He can go bankrupt. Today he shows his muscles and says, I'm very strong. And tomorrow he gets some disease and all his power is gone. We talk about manpower, but then tomorrow anyone can deceive you. Translation is available, Hindi to English and English to Hindi, and the frequency is 105. So if you want translation, agar kisi ko translation chahiye, hum English mein bolenge, kisko Hindi mein chahiye, to 105 frequency par. So today we say, I have manpower, there are thousands of people who are going to follow me and do what I do, but tomorrow they can all deceive you. So these physical powers are so temporary. Today we have and tomorrow we may not have. But the main power is the inner power, what we call as spiritual power. what we call as willpower, and that will be the future, and the future will be of that power. Because we have seen what physical power has done. We have reached the fag end of Kali Yuga, Iron Age, through this power. But we have lost our peace, love, happiness, all the values of life. We have lost them just going for these different physical powers. I think you should switch off your mobiles. Sorry to say, but no mobile should be working. I think, is anybody's mobile on? But if we have spiritual power, then all these physical powers will also come to you. They will be like your shadow. It's just like if you follow light, your shadow will follow you. But if you follow your shadow, light will go away from you. That is, you will be going towards your shadow and the light will be behind. But if you follow the light, your shadow will follow you. It means all these physical powers are actually the shadow of the spiritual power. And what do we mean by spiritual power? In Hindi we say adhyatmikta. And the word adhyatmikta, spirituality, comes from the word spirit. So what is spirit? What we call as consciousness, which is the real I. We do say I, right from morning till night. And when the question comes, who am I? Who are you? So many answers come. Maybe somebody will mention his name, someone will mention his occupation, someone will mention his language, someone will mention his nationality when asked, who are you? And these answers which we give, actually, they're all changing. Today I may have one nationality, tomorrow I may have another nationality. Today I say I am young, tomorrow I'll be old. Today I say I am a doctor, I'm an engineer, I'm a judge, I'm a so and so, and tomorrow maybe the word retired will come in bracket. Retired. You were, but not now. You are not that, you are now, you were. So again, it changes. So everything in this world is changing. And if we go to see in spirituality, we say, whatever is changing is untruth. That's why the scriptures speak about Jagat Mithyam, Brahma Satyam. This Jagat is Mithyam, it is all illusion. Why they call it illusion? Because everything is changing. Nothing is fixed. Everything is changing. In this world, everything is changing. Everything changes except the word change. The word change does not change. So if everything is changing, how can you call that the truth? Well, science will say seeing is believing. Whatever you see, you believe that. If you don't see it, you don't want to believe it. But spirituality will say whatever you see is all changing, and therefore it's all illusion. So it's not that seeing is believing, but what the truth is, it cannot be seen. Physical things are visible, but the truth is that which is unchanging, what we say nitya, sada, eternal, immortal, imperishable, which was never created, which will never be destroyed. That is the truth. And that truth is the self. So we have the physical self, which is always changing, and according to spirituality, that is untruth. But that truth, which is never changing, which was there yesterday and is today and will also remain tomorrow, that is the truth, and that is the real me. So what is that which was never created and will never be destroyed? Because this physical body again will be untruth, as it was created and one day it will be destroyed. But then we talk about the soul, the self, that's the true self. And I am that eternal, immortal, imperishable, indivisible and invisible entity, which cannot be seen with these physical eyes. Many people don't want to believe in the soul because they say, well, seeing is believing, you can't see it, and therefore why should you believe in it? But then, can these physical eyes see everything? Definitely not. These physical eyes have their limitations. Maybe these physical eyes can see something which is physical, something which is material, something which is of this world, because these physical eyes belong to matter. So something which is matter may be visible with these physical eyes. But that spiritual self is not visible with these physical eyes, because it's not physical matter. It's not physical, it is above physical, and therefore we say metaphysical. So how can something which is metaphysical be visible with these physical eyes? So you can never, never, ever argue about it, that because you can't see it and therefore you don't want to believe. So each field has its own way of understanding things. Maybe science says seeing is believing. But spirituality will say, no, what you see actually is not truth. Similarly, you go to judiciary. Judiciary will say evidence is important. Without evidence, you don't want to believe. And the evidence could be also speaking lies. You never know. Again, truth is hidden. So if somebody is speaking the truth, he will never change his statements. If he is changing his statements, it means there is something which is not the truth. So I am that truth which is unchanging. Physical body is changing. So what is soul? When we say soul, S-O-U-L, it's the source of unique light. That unique light which was never created and will never be destroyed. So when I say I means that eternal entity, that soul, which is a point of divine light. It is light as well as might. And this light and might is eternal. It is unique. It is very powerful. And when we talk about values, these values are not outside. They are within the soul. You want me to speak in Hindi? Hindi mein chahte hain. I've got a slip. Hindi, please. हिंदी में जो चाहते हैं वो हाथ उठाएं और इंग्लिश में जो चाहते हैं वो हाथ, एनी दोज वांट इन इंग्लिश, इट्स हाफ एंड हाफ, इज दैट राइट? व्हाट डू यू वांट मी टू डू? हिंदी विल बी ओके, हिंदी इज ओके. दोज हू रेज फॉर इंग्लिश, यू नो यू माइंड हिंदी, डोंट माइंड हिंदी. हाँ, जो हिंदी चाहते हैं चलिए हाथ उठाइए. But those who cannot understand Hindi and would like in English, raise your hand. You don't understand Hindi? Huh? Only one, I think. You. So maybe he gets in English, but then other speakers could be speaking in Hindi, no? English. Anyway. Hmm? I don't mind. I can speak in both. So phir Hindi mein bolti hoon. Theek hai? Baki, you can want translation, sister, or you? Who brought this? I will speak in Hindi, okay? So you can translate in English, alright? तो मैं कह रही थी कि आत्मा जो सत्य है, अविनाशी है, वो ही वास्तव में मैं हूँ. और हम जो जीवन में चाहते हैं कि हमें शांति मिले, खुशी मिले, प्यार मिले, शक्ति मिले, आनंद मिले, ज्ञान मिले, हम चाहते हैं ना, कोई नहीं ऐसा होगा जो चाहता होगा कि मुझे दुख मिले, मुझे अशांति मिले, मुझे नफरत मिले. चाहते हैं कोई? कोई चाहता है? सब यही चाहते हैं शांति मिले. लेकिन विडंबना तो ये है कि जो हम चाहते हैं वो हमें बाहर से नहीं मिलेगी, वो हमारे भीतर ही है. इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको शांति चाहिए तो अपने अंदर देखो, आपको खुशी चाहिए तो अपने अंदर देखो, प्यार चाहिए अपने अंदर देखो, मांगो नहीं. ये गुण मांगने से नहीं मिलते हैं. आज हम किसको कहेंगे कि हमें शांति दो, तो शांति कैसे देगा? शांति कोई चीज तो नहीं है ना जो हमारे हाथ में रख देगा लो और कहेगा लो ये शांति. यहां तक कि कहा गया है कि ये तो मन की स्थिति है शांति, ये तो आपकी सोच में है. आप जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे. अगर हम ये सोचते हैं मैं बहुत अशांत हूं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको शांति नहीं दे सकेगी. और अगर आप कहते हैं मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको अशांत नहीं कर सकेगी. एक चुनौती, एक चैलेंज है. इसीलिए आप सबसे पहले ही कहलवाया ओम शांति. ओम शांति माना मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं. तो शांति हमसे कितनी दूर है, उसके लिए हमें जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें कोई एकांत स्थान की भी जरूरत नहीं है. क्योंकि शांति केवल आवाज का अभाव नहीं है, आवाज के बीच में भी आप शांति अनुभव कर सकते हैं. ऐसे नहीं कि नहीं, आप मंदिर में जाइए, ढोल बज रहे हैं, घंटे बज रहे हैं, भजन कीर्तन चल रहे हैं, तो भी आप शांति का अनुभव कर सकते हैं. और एक शमशान घाट में जाइए जहां कोई आवाज नहीं, और वहां भी मन अशांत हो सकता है. तो मन में शांति केवल स्थान से नहीं आएगी, ये तो हमारी सोच से आएगी. इसीलिए कहा गया जैसा सोचोगे वैसा ही अनुभव करोगे. तो ये शांति का अनुभव करने वाला कौन? ये देह नहीं. देह को शांति नहीं चाहिए. देह की शांति का मतलब होता है मृत्यु. जब किसकी मृत्यु होती है तब कहते हैं इनका देह शांत हो गया, और फिर भी आत्मा को याद कर क्या कहेंगे, हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना। देह तो शांत हो गया पर आत्मा को शांति हुई या न हुई ये अभी तक निश्चय नहीं है, तभी तो ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम एक कड़वा सत्य बताते हैं, वो कड़वा सत्य क्या है कि जिसने जीवन में शांति अनुभव नहीं की ना, वो देह त्याग के बाद भी वो आत्मा शांति नहीं अनुभव करेगी। ये कड़वा सत्य है। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो अशांति के संस्कार आत्मा अपने साथ ले गई। इसलिए जब कोई व्यक्ति मरता है तो क्या हम कहते हैं, ये आत्मा अपने संस्कार ले गई, अपना कर्म ले गई, क्योंकि कर्म ही संस्कार बनाते हैं। बच्चा पैदा होता है तो हम क्या कहते हैं, बच्चा अपना भाग्य लेकर के आया, पर वो भाग्य बना कैसे, संस्कारों के अनुसार, और संस्कार बने कैसे, कर्म अनुसार। अब ये सब आत्मा की शक्ति है, हम सोचते हैं, ये सोचने की शक्ति केवल मस्तिष्क की शक्ति नहीं है, मस्तिष्क तो केवल एक माध्यम है, पर वो सोचने वाला जो मन है वो वास्तव में आत्मा की शक्ति है। फिर हम कई बातें सोचते हैं पर हर बात जो सोचते हैं वो करते नहीं है, क्योंकि बीच में एक दूसरी शक्ति आती है, बुद्धि। इसीलिए कहते हैं सोच समझ कर कर्म करो। सोचते तो बहुत हैं, लेकिन समझ अनुसार कर्म अगर होंगे तो वो कर्म श्रेष्ठ बनेंगे। तो वो समझ शक्ति जिसको हम बुद्धि कहते हैं, वही निर्णय देती है, जिसको हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। वो अंतरात्मा की आवाज जो बुद्धि है, कोई तराजू की तरह है, जो हमें न्याय देती है, जो मूल्यों को महत्व देती है, और फिर हम हाथों से या इंद्रियों से कर्म करते हैं, फिर वही कर्म संस्कार के रूप में आत्मा में निहित हो जाती है, समा जाते हैं, और वही आत्मा अपने साथ ले जाती है, यही वास्तव में मैं हूँ। अब इसको हमें समझना होगा, और जब हम ये समझ गए कि मैं वो एक चेतन सत्ता आत्मा, एक ज्योति, प्रकाश का पुंज, चमकता हुआ एक सितारा, जो अजर अमर अविनाशी हूँ, इस शरीर से पहले भी थी, शरीर के बाद भी रहूंगी, और मैं ही वो आत्मा शांत प्रेम आनंद शक्ति की स्वरूप हूँ, इसको पहचान लिया तो फिर उस ईश्वर को पहचानना भी मुश्किल नहीं है। तो आगे के विषयों में आपको बताया जाएगा वो परमात्मा कौन है, कैसे हम उनसे संबंध जोड़े, कैसे हम उनसे वो जो आत्मा के मूल गुण है वो अधिकार के रूप में प्राप्त करें, ये आप यहाँ अनुभव करेंगे। मैं समझती हूँ विनिजार भाई, should I close? I can go? We are finished? 15 minutes more because I was thinking 9:30. तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा विषय पढ़ाया जाता है जिसको हम राजयोग कहते हैं। जिस राजयोग के माध्यम से हम अपने इंद्रियों के राजा बनते हैं, अपने मन के भी राजा बनते हैं, सबके दिलों के भी राजा बनते हैं, और हम विश्व के भी राजा बन सकते हैं। राजयोग, राजाई दिलाने वाला वो योग, क्योंकि योग के नाम पर आज बहुत सारे कई क्रियाएं सिखाई जाती है योगा कहकर, पर योग का जो वास्तविक अर्थ है वो है संबंध, जोड़, मिलन। और राजयोग का अर्थ है आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ। तो इस मिलन के लिए पहले खुद को समझना होगा, फिर उस परमात्मा को समझना होगा, फिर कैसे मिलन हो वो विधि जाननी होगी, और फिर उसे प्राप्ति क्या होती है वो समझना होगा। तो ये चारों ही विषय आज के दिन आपके कवर होंगे भिन्न भिन्न वक्ताओं के द्वारा। तो इसीलिए हम कौन है ये सबसे जटिल प्रश्न है। फिर दूसरा जटिल प्रश्न, ईश्वर कौन है। फिर तीसरा प्रश्न है कि हम उस ईश्वर से कैसे संबंध जोड़ें। वैसे तो दुख में तो हम उसको याद करते ही हैं, इसीलिए कबीर का बहुत सुंदर दोहा है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। पर जो सुख में ही करे तो दुख काहे को होए। सुख में सिमरण ना किया, दुख में करता याद रे। तो राजयोग हमें सिखाता है कि सुख में भी उसका सिमरण हो, उनके साथ एक अटूट संबंध हो, और जब वो अटूट संबंध हो जाता है तो दुख तो कभी आता ही नहीं है। जैसे आप एक एयर कंडीशन कमरे में रहते हैं, मान लो एयर कंडीशन है कमरा, आपने 25 डिग्रीज पर अपना वो एयर कंडीशनर सेट कर दिया है, आपने कंडीशन कर दिया अपने कमरे को 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बाहर चाहे 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी क्यों ना हो, पर आपको वो 25 ही अनुभव होगा। तो बाहर का वायुमंडल कैसा भी हो, पर आपने अपने आप को कंडीशन कर दिया है। इसी प्रकार अगर मन की कंडीशनिंग करना हम जान गए, तो चाहे कितना भी दुख और अशांति का वातावरण हो, वो अशांति वो दुख हमें प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि हमने अपने मन को कंडीशन कर दिया है। तो यही राजयोग हमें सिखाता है कि उस मन को ऐसे कंडीशनिंग कर दो, कैसे अपने अनुकूल बना दो, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो वो परिस्थिति आपको प्रभावित न करे। आप परिस्थिति को प्रभावित जरूर करो, पर वो परिस्थिति आपको प्रभावित न करे। पर उसके लिए आंतरिक शक्ति चाहिए। तो बाह्य शक्तियों को तो हमने देख लिया कितनी क्षण भंगुर है, पर जो आंतरिक शक्ति होगी, उस आंतरिक शक्ति के आधार से हम बाह्य शक्तियों को भी अपने वश में कर सकते हैं और अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो यही वास्तव में राजयोग हमें सिखाता है। तो जब हम स्वयं को उस आत्मनिश्चय में पक्का करते हैं, तो महसूस होता है कि ये शरीर की इंद्रियां तो मेरी सेवक है, ये मन भी मेरा सेवक है। हम इस मन में जो सोचना चाहें वही सोचें, नहीं सोचना चाहें न सोचें। और जब इंद्रियां सेवक बन गई, मन भी हमारा सेवक बन गया, तो प्रकृति भी सेवक बन जाएगी। सबके दिलों को भी हम जीत सकेंगे, सब सहयोगी बन जाएंगे, और परिणाम स्वरूप हम सबके दिलों के राजा भी बन जाएंगे। तो इंद्रियों के भी राजा, मन के भी राजा, सबके दिलों के भी राजा, और साथ साथ नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी श्री लक्ष्मी बने, मानव देव बन जाता है इस राजयोग से। तो आज के दिन ये सारे विषयों पर आपका बहुत सुंदर व्याख्यान मिलेगा आपको, और मुझे विश्वास है कि आप आज और कल इन दो दिनों में ऐसा कुछ अनुभव करके जाएंगे, एक अमिट छाप आप अपने जीवन में लगा कर जाएंगे, जो इस अमिट छाप को केवल अपने तक ही नहीं रखेंगे, लेकिन जहां भी जाएंगे वहां उनको बांटेंगे भी। यही मेरी आप सबसे गुड विशेस है, शुभकामनाएं हैं, और आगे आपको बहुत कुछ सुनना है, बहुत कुछ अनुभव करना है। तो आपने जो सुना अभी हम 2 मिनट के लिए उसका अनुभव करेंगे और महसूस करेंगे कि मैं वास्तव में कौन हूं। तो सीधा बैठेंगे, स्वयं से पूछें, मैं कौन हूं? स्वयं को ही उत्तर दे, मैं इस देह से न्यारी एक चैतन्य शक्ति हूं। अजर अमर अविनाशी हूं। मैं एक आत्मा हूं। चमकता हुआ सितारा हूं। इस सृष्टि रंगमंच पर एक अभिनेता हूं। इस संसार में मेहमान हूं। मेरा मूल वतन 5 तत्वों से पार शांति का धाम है। मेरा मूल स्वभाव भी शांति है। शांति की शक्ति मुझ आत्मा में विद्यमान है। यही मेरी सच्ची शक्ति है। मुझ आत्मा ने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। मेरा मन शांत है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांत स्वरूप शांत स्वरूप। इसी शांति की गहराई में जाएं और अनुभव करें इस शक्ति को। तब वापिस लौटी, फिर से कर्म करने लिए, पर इसी शांति की शक्ति के साथ। तो हर कर्म कुशल होगा, सफल होगा, सुखदायक होगा। ओम शांति।